ओम शांति। जो भी हॉल के बाहर है वो कृपया जल्दी से अंदर आ जाएं, क्योंकि विशेष दिन है आज और आप सभी उसी डिपार्टमेंट से हैं जिस डिपार्टमेंट में हम भाई जी को कितने ही दशकों से देख रहे हैं। ये मुस्कुराता हुआ चेहरा, ये शांत प्रिय उनका व्यवहार हम सबके हृदय में सदा ही समाया हुआ है, समाया हुआ है। सभी अच्छे से जानते हैं भाई जी को। भाई जी विशेष 1971 में आप बाबा से जुड़े, बाबा से मिले, बाबा का परिचय आपको मिला, और उससे भी विशेष 1973 में सबसे पहला सेंटर उड़ीसा में खोलने के निमित्त भाई जी बने और बाबा की सेवाओं में चार चांद लगाया। 1986 में आप मधुबन पहुंचे और दादा विश्व रतन जी के साथ, रमेश भाई जी के साथ उन्होंने अकाउंट्स डिपार्टमेंट को संभाला, और राजयोग एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन के आप ट्रेजरार हैं और मैनेजिंग कमेटी के भी आप मेंबर हैं, और सबसे ऊपर भाई जी का ये मुस्कुराता हुआ हर्षित चेहरा और शांत प्रिय उनका व्यवहार। तो जोरदार कर्तलन ध्वनि से हम भाई जी का स्वागत करते हैं। बहुत बहुत आप भले अभी हमारे भाई बहन आ रहे, लेकिन जोर से अभी नहीं वो एनर्जी दिखाई दी है बिल्कुल, जिनकी वजह से आज हम सभी यहाँ एकत्रित हुए हैं, जिनके सानिध्य में ये सेवाएं हो रही हैं, जिनकी वजह से ज्ञान सरोवर में हम ये बट्टी का लाभ ले रहे हैं, वो है हमारे आदरणीय गोकुल भाई जी, और उनके साथ में ही जो हमारे ऋषि भाई जी हैं, आप इनको भी सभी जानते होंगे कि इस प्रोजेक्ट जो ये भट्टी का प्रोग्राम है, जिसके प्लानिंग के केंद्र बिंदु आप बने, जिनके मन में ये विचार आया कि हम सबके लिए एक भट्टी होनी चाहिए, तो जोर से उनके लिए भी तालियां कि भाई साहब निमित हैं इस भट्टी के लिए और हमारे बीच में है। 20 वर्षों से आप बाबा की सेवा में हैं, आप दालमिया ग्रुप में वर्किंग एज अ CSR फाइनेंस हेड हैं, और समय प्रति समय मधुबन में आकर के भी आप अपनी सेवाएं देते हैं। तो हम दोनों के बीच में बहुत ही विशेष, हमारे बीच में आप दोनों बहुत ही विशेष हैं, एक चांद है, तो एक चांद के करीब का वो सितारा है जो चमक रहा है, और हमारे बीच में आज ऋषि भाई जी विशेष भाई साहब से ऐसे प्रश्न पूछेंगे जो हम सभी जानना चाहते हैं कि कैसे भाई जी ने इस डिपार्टमेंट में रह करके, रहस्य तो मैं नहीं खोलूंगी क्योंकि ये रहस्य ही रहना चाहिए, तो ऋषि भाई जी से अनुरोध है कि रहस्य को उजागर करें, और इतनी जो जैसे कल हम सभी ने लिविंग लाइब्रेरी का लाभ लिया, तो वास्तव में एक लिविंग लाइब्रेरी आज भी हमारे सम्मुख है, तो भाई साहब के पृष्ठों को पलट करके उनके जीवन की चरित्र गाथा हम सबके सामने प्रस्तुत करेंगे हमारे ऋषि भाई।
ओम शांति। वैसे तो बाबा हमें हर प्रश्नों से पार ले जाते हैं, सारे प्रश्नों का समाधान स्वयं बाबा देते। बाबा बाप टीचर सतगुरु के रूप में हर समस्याओं में हमें गाइड करते, मोटिवेट करते, हमारे अंदर पावर भरते। अब सोचिए जब बाबा इतना कुछ करते और साथ में हमारे ही वर्किंग प्रोफेशनल्स फील्ड से अगर भाई साहब भी जुड़ जाएं, तो कैसा होगा, कैसा मॉडल होगा, मॉडल विथ प्रो बन जाएगा, वो हो जाएगा ना, एक नॉर्मल मॉडल एक प्रो वर्जन। तो आज हम अपने फाइनेंस वर्किंग प्रोफेशनल्स के बीच, जो जो हम भी आपके बीच से ही, हम भी वैसे ही काम करते, तो उस बीच से कुछ प्रश्न के माध्यम से हम अपने और भी कार्य कुशलता को चार चांद लगाने की कोशिश करेंगे। अब जैसे हम छोटे से कोई काम करते, कोई डिपार्टमेंट हेड है, कोई बैलेंस शीट मैनेज करते, कोई कुछ क्लाइंट्स को मैनेज करते, कोई किसी कंपनी के किसी फाइनेंस में कुछ मॉडल्स को, जैसे बैलेंस शीट में कुछ डेटर्स मैनेज करते होंगे, कोई क्रिएटर मैनेज करते होंगे, जॉब में डिफरेंट डिफरेंट पार्ट प्ले करते, लेकिन भाई साहब उसके बावजूद हम क्या कहलाते, वर्किंग फाइनेंस प्रोफेशनल। और भाई साहब के जीवन को देखें तो शायद आपको पता होगा, शांतिवन, मनमोहिनी वन, आनंद सरोवर, मान सरोवर, ज्ञान सरोवर, पांडव भवन, अब जितने भी परिसर देख रहे हैं इस माउंट आबू में, सारे परिसर का मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट भाई साहब करते। तो आप सोच सकते हैं, अगर हम वर्किंग फाइनेंस प्रोफेशनल्स कहलाते तो भाई साहब क्या होंगे। बिल्कुल। तो ऐसे पुरुष हमारे बीच बैठे हैं जिनसे, जिनके जीवन को आज हम कुछ, जीवन से कुछ सीखने का प्रयास करेंगे, अपने वर्किंग प्रोफेशंस में कुछ यहां से ले जाने का कोशिश करेंगे, कुछ वाइब्रेशंस, कुछ विजुअलाइजेशन, कुछ इमेजेस दिल में समाकर कोशिश करेंगे कि अपने हम जो वर्किंग करते हैं उस क्षेत्र में यूज कर पाए। तो इस निमित्त भाई साहब से पहला क्वेश्चन है कि भाई साहब का जो जीवन है, हम जब ब्राह्मण बनते हैं तो हम सबका भी यही उद्देश्य होता कि ब्राह्मण अर्थात तन मन धन सब समर्पित, बाबा के प्रति समर्पित, उसके बावजूद भी कुछ एक्सेप्शनल हुई हो पाते हैं जो संपूर्ण यह परमात्मा द्वारा रचा हुआ यज्ञ में अपने संपूर्ण जीवन को स्वाहा कर पाए, जो इस जलते हुए यज्ञ की प्रज्वलित जो ज्वाला है उसको कंटिन्यू मेंटेन कर पाए। तो उस प्रज्वलित ज्वाला को भाई साहब ने मेंटेन किया हुआ है अपने जीवन को पूरा इस यज्ञ में स्वाहा करके। तो भाई साहब से पहला क्वेश्चन है कि ऐसा क्या भाई साहब अपने जीवन में देखा, क्या मोटिवेशन मिला, क्या गाइडेंस फोर्स मिला, क्या पावर मिला जो आपने अपने जीवन को पूरा स्वाहा कर दिया इस यज्ञ में।
ओम शांति। ये बड़ा डिफिकल्ट सेशन है। मैं सोचा कि थोड़ा ऐसे रिलैक्सिंग सेशन चलेगा कि आपस में थोड़ा रूरियान कर लेंगे हल्के पुल के रूप से, लेकिन ये तो सीरियस बात पूछ रहे हैं। जवाब क्या होगा सोचना पड़ेगा। मेरा जो पूछ रहे हैं कि क्या मैंने देखा जो जीवन को समर्पित किया, मैं कोई समर्पित होने के लिए यहां आया नहीं था। आई एम ए रेडीमेड प्रोडक्ट। किसी ने मेरे पीछे कोई मेहनत नहीं किया कि मैंने कोई मेहनत नहीं किया समर्पित होने के लिए, क्योंकि मेरे को जब ईश्वरीय परिचय मिला बाबा के बारे में, जब मैंने नन भी के था, मेरे को बाबा का ज्ञान नहीं था, तो नन भी के हिसाब से मेरे को सिर्फ इतना मालूम था कि ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय एक संस्था है। किसी ने मेरे को, इट इज बाय पोस्ट कार्ड, किसी ने मेरे को, मेरे कजिन होंगे कोई बाहर दूर दराज में रहते थे, मैं तो रिमोट बिल्कुल एक विलेज में रहता था, तो मेरे को जब ये परिचय मिला उनसे कि परमात्मा ये सृष्टि पर अवतरित होकर 36 साल से, ऐसे उस समय उन्होंने पोस्ट कार्ड में लिखा था कि सहज गीता ज्ञान और राजयोग का शिक्षा दे रहे हैं। तो मैंने पोस्ट कार्ड मेरे को मिला, इट इज आज नॉर्मल, कोई सीरियसनेस नहीं था, क्योंकि ब्रह्मा कुमारी कोई संस्था तो थे नहीं, या कोई भाई बहन थे जिनसे मिल के कोई, उनसे मैं कोई इस बारे में कुछ जानकारी ले सकूं, उस समय कोई थे नहीं। तो मैंने क्या किया, मैंने कुछ किया नहीं। तो 1970 की बात है, तब दादी जानकी पूना में रहती थी, मीरा सोसाइटी पुणे में रहती थी। 74 में दादी लंदन गई, 1970 में वहाँ रहती थी पुणे में। तो जो मेरा कजिन वहाँ थे पुणे में, उन्होंने क्या किया, उन्होंने मेरे को ईश्वरीय सेवा के लिए जो उनको सामग्री चाहिए था, क्योंकि लिफलेट्स चाहिए, बुक्स चाहिए, पंपलेट्स चाहिए, फोल्डर चाहिए, इनविटेशन कार्ड चाहिए, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने सारा मेरे पास भेजा। कोई भी ओकेजन होता था, ब्रह्मा कुमारी ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी ओकेजन होता था या उनका कोई खास फंक्शन होता था, उसके लिए उन्होंने मेरे को हर चीज के लिए मेरे को उन्होंने मेरे से उन्होंने चाहना रखा कि ये आप बल्क क्वांटिटी में छपा के हमारे पास भेजो, हम सेवा करेंगे। तो मेरे को तो बाबा के बारे में कोई नॉलेज नहीं है, खाली जस्ट फॉर्मली एक मददगार के रूप में मैंने क्या किया, जो भी उन्होंने मेरे को भेजा मैं उनको बल्क क्वांटिटी में छपा के प्रिंट करके पार्सल करके मैं पुणे भेजता था। ऐसे कंटिन्यू चलता रहा 2-3 साल तक। तो मेरे मन में एक जिज्ञासा हुआ कि मैं ईश्वरीय विश्वविद्यालय के बारे में बिना कोई जानकारी लिए इतना मदद कर रहा हूं, तो कुछ तो मैं उस चीज को सीखूं या अपने में, मैंने जैसे किसी से कांटेक्ट करके इसके बारे में कुछ ज्यादा जानकारी लूं। तो मैंने क्या किया, मैंने किसी को कोई कांटेक्ट नहीं किया, कोई थे ही नहीं। तो मैंने क्या किया, जो पंपलेट्स मैंने उनको भेजता था, मैं खुद पंपलेट छपा के शहर में गली गली, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, स्कूल, कॉलेज, जहां भी है, साइकिल में जा जाके मैंने डिस्ट्रीब्यूट किया, और कुछ नहीं किया। बाबा का ज्ञान नहीं है, खाली जैसे पंपलेट बांटते हैं ना, आपको पंपलेट दे देंगे, आप रास्ते में खड़े होकर पंपलेट बांट देंगे, जानकारी नहीं है, लेकिन मैंने बांटना शुरू कर दिया।
तो ऐसा क्या अंदर से फीलिंग्स आ रहा था जो अपने आप हो
कुछ
रहा था?
नहीं, मैंने थोड़ा सोशल सर्विस से जुड़ा हुआ था, मेरी लाइफ में शहर में जब रहता था थोड़ा सोशल लाइफ में जुड़ा हुआ था, मैंने कोई ऐसे धार्मिक कार्यक्रम होता था तो मैं उसमें भाग लेता था। तो मैंने सोचा ये भी एक कार्य है, पुण्य का कार्य है, तो इसमें भी सहयोगी बनना जरूरी है, एक आवश्यक समझा। तो मैंने खुद में वो पंपलेट को ट्रांसलेट करके लोकल लैंग्वेज में फिर मैंने सबको डिस्ट्रीब्यूट किया। इतने में क्या हुआ, दिल्ली में किसी को मालूम पड़ा, राव भाई थे, आपको मालूम होगा कि नहीं होगा, तो राजेंद्र नगर में रहते थे, CSIR में कहीं कहां सर्विस करते थे, तो उनको मालूम पड़ा तो वो आए मेरे से कांटेक्ट किए कि आपको कुछ जानकारी बिना आप ये सब कैसे सेवा कर रहे हो। मैंने बोला ऐसे मेरे को पुणे से दादी जानकी वहां रहती थी, उन्होंने कहा ये पंपलेट छपा के भेजो, तो मैं भेज रहा हूं, मेरा खाली कर्तव्य है एक। तो फिर उन्होंने कहा क्या किया, तो उन्होंने कहा कि भाई देखो यहाँ तो कोई सेवा केंद्र नहीं है, इसलिए यहाँ कोई सेवा केंद्र खोलना चाहिए। मैंने बोला अच्छी बात है, खोले तो अच्छी बात है, अब ब्रह्मा कुमारी संस्था क्या होती है मैं तो जानता ही नहीं हूं। इतने में हम दोनों कलकत्ता गए, यहां से कलकत्ता में दादी निर्मल शांता जी रहती थी, उनके पास गए, उनके पास गए और उनको रिक्वेस्ट किए कि भाई हमारे शहर में कोई सेवा केंद्र नहीं है, आप भाई बहनों को भेजिए, वहां भी जो भी सेवा करना है आप वहां सेवा कराइए। तो उन्होंने राजी हुए, उनको समझ में आया कि ऐसे ऐसे वो भी माने क्या करते थे, सेवाएं करते थे अलग अलग स्थान पर जाके, तो उन्होंने भाई बहनों को भेजा। इट इज इन 1970 आई थिंक 71 के एंड में भेजा, ठीक। तो जब भेजा तो भाई बहने आए तो वहाँ उनको अरेंजमेंट यहाँ करना था, कौन करेगा, यहाँ तो लोकल में कोई किसी को जानकारी नहीं है, तो मैंने उसका अरेंजमेंट सारा किया
जी।
शहर में एक धर्मशाला लिया, एक जैन धर्मशाला था, वो धर्मशाला लिया, धर्मशाला में बर्तन भी होते हैं बहुत, और भाई बहने जो आए थे चित्र प्रदर्शन साथ में ले आए थे, बर्तन भी ले आए थे, तो ऐसे मैंने क्या किया, मैंने उनके लिए सारी व्यवस्था धर्मशाला में कर दिया। जब धर्मशाला में व्यवस्था हुआ, उन्होंने अच्छी तरह से एकदम सजा के प्रदर्शन लगाया, एक अच्छा हॉल था, हॉल में एक शिविर के लिए, कैंप के लिए, एक मेडिटेशन सिखाने के लिए एक रूम लिया, और बाकी पूरे धर्मशाला में उन्होंने प्रदर्शन लगाया। तो ये धर्मशाला जब लगा, अच्छा लगा सबको, मैंने यहाँ गया, भुवनेश्वर होता है उसका कैपिटल,
उड़ीसा का कैपिटल भुवनेश्वर है,
वहाँ गवर्नर थे उस समय बीडी जत्ती, गवर्नर थे बीडी जत्ती, जब गवर्नर थे मैं उनको गया बुलाने के लिए, सिर्फ ये प्रदर्शनी उद्घाटन करने के लिए है। तो मैं जब गया गवर्नर हाउस में, मेरे को एंट्री भी नहीं दी उन्होंने, मैंने बोला मैं गवर्नर से मिले बिना जाऊंगा ही नहीं, जिद कर लिया, बैठा रहा। तो फिर एक जान पहचान की थोड़ी सी व्यक्ति कोई मिले, तो उन्होंने मेरे को गवर्नर से मिलाए, तो मैंने उनको निमंत्रण दिया, लेकिन वो राजी हो गए आने के लिए। तो गवर्नर साहब बीडी जत्ती आके वो प्रदर्शनी का उद्घाटन किए, और मैंने सारा शहर में अनाउंसमेंट किया कि ऐसे प्रदर्शन लगाए, भाई बहने आप आइए देखिए, विश्व नवनिर्माण आध्यात्मिक प्रदर्शनी, एक नया चीज आपके शहर में आया है। तो फिर उद्घाटन हुआ, शिविर लगा, फिर जब 8 दिन 10 दिन तक उन्होंने सेवा किया, सेवा करने के बाद क्या हुआ, तो उन्होंने अपना बुरिया बिस्तर बांध के फिर चले गए बहने। मैंने बोला ये क्या हुआ, ये आए थे यहाँ सेवा करके सेंटर खोलने के लिए, और ये तो सेवा करके चले गए। तो मैंने जब बहनों से रिक्वेस्ट किया, तो उन्होंने मेरे को क्या कहा मालूम है, कि जब तक हमको कहीं से इनविटेशन नहीं मिलेगा और ब्रह्मा कुमारी संस्था का खर्चा कोई बियर नहीं करेगा, तब तक हम कोई संस्था सेंटर नहीं खोल सकते। मतलब ये तो वंडरफुल चीज है, अभी घर मकान लेके उसका खर्चा बियर करके फिर इनको बुलाएंगे तो ये आके सेंटर खोलेंगे, चलो कोई बात नहीं जाने दो। वो चले गए सारे। तो मेरे मन में रहा एक जिज्ञासा, रहा जिद, रहा एक सेंटर खोलना चाहिए उनका, ब्रह्मा कुमारी का एक आश्रम यहाँ खोलना चाहिए
जी।
भाई बिना ईश्वरीय ज्ञान के बता रहा हूँ ये बात,
मैं सोशल एज ए सोशल वर्कर थे, उससे ही मोटिवेट होके इन्होंने सोशल वर्क कर रहे थे।
जो बाबा आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, ये सब चीजों की ज्ञान नहीं थी, परमात्मा का अवतरण हो रहा है, ये सब चीजों की कोई ज्ञान नहीं था। तो मैंने एक जिद पकड़ लिया मन में कि यहाँ एक सेंटर होना ही चाहिए। तो मैंने क्या किया, घर ढूंढने लगा शहर में। अरे मैं थोड़ा इतना छोटा था, मेरे को इतना बड़ा मकान कौन देगा, शकल सूरत देख के इतना बड़ा मकान लेके सेंटर खोलने जैसा कौन मकान देगा। फिर भी मैंने ढूंढना शुरू किया, ढूंढते ढूंढते मेरे को एक मकान मिला। इमेजिन, मेरे को एक मकान मिला।
वो फ्री में था या रेंटेड था?
नहीं, रेंटेड था, रेंटेड मकान मिला। लेकिन मैंने वो मकान लेने का भी मेरे को बहुत दिक्कत आया, बहुत मैंने विघ्नों का सामना करना पड़ा, क्योंकि वो था एक हेल्थ डायरेक्टर थे, उनका मकान था, बड़ा मकान था, किसी ने देखा नहीं होगा मकान आप में से, वो मकान वहां था, तो उसमें एक एजुकेशन ऑफिस ऊपर चलता था, नीचे का पोर्शन खाली था। लेकिन बात ये थी, वो मकान जो भी किराए पर रहते थे, थोड़े दिन रहते थे, छोड़ के चले जाते थे। क्यों? कि लोगों की एक धारणा थी कि इसमें भूत प्रेत रहते, किसी को कुछ इफेक्ट होता है तो थोड़े दिन के बाद छोड़ के चले जाते हैं। तो काफी दिनों से वो मकान क्या हुआ, किसी ने लिया नहीं और बंद पड़ा रहा
जी।
वो मकान ऐसे ही बंद पड़ा रहा, खाली ऊपर एक हेल्थ ऑफिसर एजुकेशन ऑफिस चलता था, वो आते थे, उनका ऑफिस का टाइम पूरा होता था, वो चले जाते थे। एक क्वेश्चन में आपका पूरा हो जाएगा शायद सेशन।
नहीं नहीं पैसा भी बहुत
अच्छा,
है
बहुत है। तो वो मकान जो लिया मैंने, वो हेल्थ डायरेक्टर के पास मैंने गया, अरे वो भी मेरे को आनाकानी कर दिए, आया छोटा सा लड़का मकान लेने के लिए, जा मकान नहीं मिलेगा है। उनको लगा कि ये कहां से किराया देगा तो मकान मिलेगा। तो मैंने क्या किया, बार बार उनके पीछे पड़ा रहा, जितने बार उन्होंने उन्होंने मेरे को भगाया मैं उतने बार उनके पीछे पड़ा रहा। आखिरी वो एकदम बिल्कुल क्या होते हैं माने एकदम
कि चलो दे ही देते हैं,
हाँ हाँ करके अच्छा चल ले लो। मैं बोला किराया कितना है, उन्होंने बोला 300 रुपया किराया है, 300 रुपीज। एट दैट टाइम 300 रुपीज माना बहुत है, बट 70, 71 में
लोगों की सैलरी हुआ करती थी वन मंथ की,
हाँ बहुत है। तो मैंने क्या किया, मेरे बुद्धि में एक आया कि मैं कहाँ से पैसा लाऊं। तो मैंने क्या किया, जो वहाँ अटेंड किए थे शिविर और जो अच्छे अच्छे बड़े रेस्पेक्टेड पर्सन्स वहाँ आए थे गवर्नर के प्रोग्राम में, मैं उनको अप्रोच किया, हर एक के पास जाके अप्रोच किया। तो किसी ने एक हमारे एक क्या कहते हैं मीडिया ऑफिस है, लोकल जो पेपर्स निकलते हैं वो अच्छे बड़े समाज में उनका अच्छा मान्यता है, तो उनके पास गया। ऐसे ही भी वो सोशल सर्विस के लिए कुछ ना कुछ डोनेट करते हैं, तो उनके पास गया, उन्होंने 100 रुपया दिया। फिर और एक कोई मेडिकल एजेंसी का एक थे व्यक्ति, उनके पास गया, उन्होंने 50 रुपया दिया। और एक डाबर कंपनी के कोई व्यक्ति थे, उनके पास गया, वो 50 रुपया दिए। हैं जो जिज्ञासु आए थे उनको, जिन जिनको मैं जानता था, उनके एक एक के पास जाके मैंने लिस्ट बनाया। मेरा भी कुछ उसमें कंट्रीब्यूशन था।
आप उस समय जॉब करते थे क्या, कुछ करते?
हाँ जॉब माना मैं वो एक हमारा कुछ लौकिक में एक प्रिंटिंग प्रेस था,
अच्छा,
जिसमें मैं थोड़ा उसमें
कुछ मॉनेटरी बेनिफिट हो जाता था,
करता था। तो फिर ऐसे हो के 800 रुपया का एक बजट बना।
वाह,
800 रुपया का बजट बनाया। जब 800 रुपया का बजट बना, मैंने देखा 300 रुपया मकान के लिए और 500 रुपया बहनों के लिए।
ये तो एक मंथ का था ना?
एक महीने का 800 रुपया, क्योंकि हर कोई देने के लिए तैयार हो गए। तो 800 रुपया में मैंने फिर बजट जब बनाया, तो मैं एक बड़े अच्छी तरीके से बड़ा निमंत्रण पत्र प्रिंट किया, बहनों को निमंत्रण देके अपने तरीके से जो मैं लिख सकता था,
जी जी,
सस्ता खोलने के लिए। तो मैं फिर वो बजट बना के सबका सिग्नेचर भी मैंने लिया।
अच्छा,
बजट में
ऐसा नहीं कि जो जो कंट्रीब्यूट किए,
जो भी कंट्रीब्यूट किए उनका मैं कंसेंट लिया कि वो देंगे मंथली।
अच्छा, मंथली देंगे?
हाँ मंथली देंगे, उन्होंने एश्योरेंस दिया।
जी भाई साहब, फिर वो सेंटर एस्टेब्लिश हो गया, जो आप सेंटर 800 रुपए कलेक्ट किया आपने, वो सेंटर एस्टेब्लिश हो गया।
छपा के फिर कलकत्ता गया, फिर दादी जी के सामने, दादी जी ने मेरे को ऐसे स्टेज पर बिठा के फिर बोला कि आप निमंत्रण पत्र पढ़ के सुनाओ। क्लास में सब भाई बहने थे, मैं तो देख के हैरान हो गया कि मैं तो ब्रह्मा कुमार नहीं हूं और उनके सामने आया हूं निमंत्रण देने के लिए। और निमंत्रण दिया, फिर उन्होंने 1973 में बहनों को भेजा। लेकिन ये जो घर मैंने लिया, ये घर जो भूतकोठी था, उसको
ऐसे भी यज्ञ के स्टार्टिंग में भी हमारा ब्रिज कोठी भी बोला जाता है, भूतकोठी ही था। वैसे ही भाई साहब ने भी स्टार्ट किया तो भूतकोठी
कर दिया। मैं आपको सच बताऊं, जब वो मकान मैंने खोला, मेरे को खुद को डर लगा, खुद को बहुत डर लगा, लेकिन हिम्मत करके उस मकान को मैंने पूरा सफाई किया, खुद अकेले हाथ में सफाई किया, पूरा रंग रोगन किया, कोई मैं मजदूर नहीं लगाया। पेंट ये उस समय आपको क्या बताऊं, ये पेंट ऐसे नहीं होता था
उस समय, नॉर्मल चूना को
हाँ वो लाके
चूना को बाल्टी में डाल के उसको पानी डाल के फिर उसको करते
उसको करता था, उसको पूरा सफेदी किया, फिर प्लम्बिंग का काम सब खराब पड़ा था, प्लम्बिंग का काम सब किया, सारा प्लम्बिंग ठीक किया, इतना
ये सब बाबा के ज्ञान से पहले
पहले प्लम्बिंग का काम सारा किया, इलेक्ट्रिक का काम सारा लटके हुए थे सारा उसको भी ठीक किया, कवाट झर का जो भी है पेंट करने का था उसको भी सारा पेंट किया करके एकदम सेंटर को पूरा लगेगा जैसे कोई नया सेंटर बना हुआ है। फिर 1973 में फिर वहां से बहने आए, दो बहने आए, पहले वो रानी बहन जो है मुजफ्फरपुर में आजकल है
जी, रानी दीदी
पहले आई थी वो 1973 में। फिर 1973 में जब इनॉग्रेशन हुआ उसका, फिर मैंने उस समय फिर गया वही भुवनेश्वर सेक्रेटरी गया, वहाँ चीफ मिनिस्टर थे हमारे विश्वनाथ दास जी, विश्वनाथ दास जी जो यूपी में पहले गवर्नर थे, यूपी में गवर्नर थे, वो जब गवर्नर थे वो गवर्नर हाउस में उन्होंने ब्रह्मा कुमारी का एग्जीबिशन लगाया था विश्वनाथ दास जी।
तो वो सेंटर इस्टेब्लिश हो गया वहां पे, चलता रहा उस जगह पे,
हाँ
रेंट पे चलता रहा?
नहीं नहीं, वो फिर मैंने इनॉग्रेशन में गवर्नर जी को बुलाया
जी,
फिर गवर्नर आए,
फिर
जो कंट्रीब्यूट किए थे वो सारे भाई बहने आए उस समय, आए तो उनको अच्छा लगा, उन्होंने माहौल देखा अच्छा माहौल है, बहने आई इतनी सारी भाई बहन आए, बाहर से भी कुछ भाई बहन आए थे ब्रह्मा कुमारी भाई बहने। तो फिर वहाँ 1973 में जब उनका उद्घाटन हुआ इनॉग्रेशन, वो गवर्नर चीफ मिनिस्टर आए थे
जी जी,
विश्वनाथ दास जी जो गवर्नर थे उस समय ओडिशा के चीफ मिनिस्टर थे, तो चीफ मिनिस्टर को बुलाया था वहाँ इनॉग्रेशन करने के लिए, तो इन्होंने इनॉग्रेशन किया था। तो फिर 1973 के बाद फिर अच्छी तरह से सेंटर चलने लगा,
सेंटर तो चलने लगा। फिर आपका रोल क्या रहा फिर आगे?
मेरा रोल क्या रहा, मैं सेंटर के साथ तो कोई समर्पित नहीं था, मैं तो बाहर का व्यक्ति था,
बिल्कुल
मैं मैंने आता जाता था,
संपर्क में थे,
संपर्क में रहा, संपर्क में रहा, और मैंने देखा रोज भाई बहन आने लगे, क्लास होने लगा, धीरे धीरे जब क्लास होने लगा काफी भाई बहन आने लगे, इतने भाई बहन, मैं हम एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतने भाई बहन आएंगे बाद में यहाँ सेंटर खोलने के बाद इतने भाई बहन आएंगे। तो धीरे 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 थोड़ा ज्ञान का भी समझ में आया, तो मैंने बहनों को काफी मदद करने लगा सवेरे शाम दिन, फिर जहां जहां सेवाएं हुई तब तक तो थोड़ा बहनों से मिल घुल मिल गया था, तो जहां भी पहला सेवा केंद्र खोलने के बाद जहां भी सेवा हुआ वहां मैंने गया और वहां सेवा किया, नेक्स्ट ये डिस्ट्रिक्ट ये डिस्ट्रिक्ट ये डिस्ट्रिक्ट, कहां ऐसा नहीं है कि किसी भी डिस्ट्रिक्ट में सेवा केंद्र नहीं खोला।
उस समय बाबा का परिचय था आपको?
हाँ, फिर भी तो ज्ञान में आ गया ना बहनों के साथ रहते रहते।
अच्छा।
बहनों के साथ रहते
तो सेवा करते करते बाबा के ज्ञान में आए।
हाँ, सेवा करते करते
नॉर्मली क्या होता है, हम लोग पहले ज्ञान में आते फिर सेवा करते हैं,
फिर मैंने
भाई साहब ने उल्टा पहले सेवा किया फिर ज्ञान,
सेवा करते करते मैं ज्ञान में आ गया। जब ज्ञान में आ गया तो सेवा का एक क्या हुआ, एक
बल मिला,
जोश आ गया सेवा करने की, जहां भी हो चलो आज सेवा के लिए, काफी भाई बहन भी साथ देने लगे, तो फिर हर दिन हर कभी ना कभी कहीं ना कहीं सेवा के लिए निकल जाते थे ग्रुप लेके संगठन में, कभी नहीं सोचते थे कि यहाँ कहाँ सेवा करेंगे, अरे चलो चित्र प्रदर्शन उठाओ गाड़ी उठाओ चलो, जहां भी गए वहां सेवा केंद्र खुलता गया।
वाह,
मैं सोचता हूं मेरे होते हुए प्राय प्राय सभी डिस्ट्रिक्ट में सेवा कर, पुरी हो परमपुर हो, आपको नाम अगर याद होगा भुवनेश्वर हो, कहां भी हो हर जगह सेवा केंद्र उस समय खोल गया था। फिर एक समय क्या हुआ, आपने बोला ना कैसे मैंने समर्पित हुआ
जी,
ऐसे तो मैंने समर्पित रूप में
सेवा तो सभी कर रहे हैं, हम भी सेवा कर रहे हैं और बहुत सारे सेवा
ऐसे भी मैंने जो सेवा किया मैं समर्पित रूप से ही सेवा करता था, माने मेरा खाना पीना रहना समर्पित का कोई लिस्ट नहीं था, लेकिन मेरा रहना खाना पीना सब कुछ बहने संभालते थे, लेकिन मैं इंडिपेंडेंट रहता था। मैं अपना जो इंडिपेंडेंसी उसको नहीं छोड़ता था, नहीं छोड़ा था। मैं सब कुछ करूंगा, जो कुछ सेवा होगा सब कुछ करूंगा, लेकिन छुप के निकल जाऊंगा, पकड़ में नहीं आऊंगा किसी के। बहने ढूंढते रहेंगे, अरे इतना सेवा किया, ये सब किया, कहाँ गया, अरे देखो देखो कहाँ गया, देखो ढूंढो ढूंढो। उस समय आपको सच बताऊं, एक ब्रह्मा कुमारी का लाइफ क्या होता था, बहनों को कितनी आवश्यकता थी उस समय। अगर कोई एक स्टूडेंट रूठ जाता था ना, बहने जी जान लगा देते थे, क्यों रूठ गया, किस लिए रूठ गया, क्यों नहीं आ रहा है। आजकल तो समय ही बदल गया।
तो भाई साहब, आप फिर वहां से मधुबन कैसे आए?
मधुबन माने का बहुत बड़ा हिस्ट्री है,
तो थोड़ा सा बता दीजिए हमें।
मधुबन माने
शॉर्ट में
हिस्ट्री ये है, मैं 1973 में मधुबन गया। जो समर्पित भाव की बात आप कह रहे हैं ना
जी,
मेरा संपूर्ण समर्पित होके मधुबन में रहने के लिए दिल था। मैंने किसी को वहां डाली थी, मैंने उनको पूछा कि मैं समर्पित होना चाहता हूं, मैं अभी ये लौकिक दुनिया में किसी भी प्रकार से कोई भी अटैचमेंट रख के, कोई भी क्या कहते हैं, नौकरी टोकरी करके किसी भी प्रकार से अवर जीवन को जीना नहीं चाहता हूं
जी,
समर्पित होना चाहता हूं। तो दादी जी ने क्या कहा मेरे को, मेरे को मैंने खाली एक शब्द उच्चारण किया, मेरे को अभी किसी में रुचि नहीं है। शब्द को आप लीजिए, किसी में मेरे को रुचि नहीं है। तो उन्होंने मेरे को क्या कहा मालूम है, बोला आपको रुचि नहीं है तो ईश्वरीय सेवा में भी रुचि नहीं आएगी। रुचि जो क्वालिटी है, दैट शुड बी द इंस्टिंक्ट क्वालिटी, दैट शुड बी विथ यू। इंटरेस्ट, किसी भी सेवा काम कर रहे हो उसमें अगर इंटरेस्ट है, दैट यू कैन ट्रांसफर दैट इंटरेस्ट
इनटू स्पिरिचुअल इंटरेस्ट,
टू स्पिरिचुअल इंटरेस्ट। तो उन्होंने मेरे को मना कर दिया। मेरे को उस समय इतना इसके बारे में इतना सोच नहीं था। फिर मैंने सोचा कभी मधुबन में कभी कहीं समर्पित नहीं होऊंगा। सच बताऊं, जिद कर लिया, समर्पित नहीं होऊंगा।
फिर कैसे हुए?
लेकिन एक्सीडेंटली कुछ ऐसा हुआ लाइफ में, तो मैं बीमार पड़ गया। बीमार पड़ गया माना नियर टू डेथ, ऐसा एक्सीडेंट हुआ। तो मैंने क्या किया, मैंने तो सोचा था मधुबन नहीं जाऊंगा। उस समय क्या हुआ ना, मधुबन से चंद्रमणि दादी और मोहिनी बहन, मोहिनी बहन जानते हैं आप, दादी के पास, बड़ी दादी के पास जो मोहिनी बहन रहती
जी, जो कृष्ण का जब जिसमें कृष्ण का रोल बहुत अच्छा प्ले करते थे,
देखा है सबने, नहीं देखा
हल्के से हेल्दी से थे, दादी के साथ कई दीदी के साथ रहते थे।
मोहिनी बहन यूपी की है ना, मोहिनी बहन यूपी की है, लखनऊ की,
यूपी लखनऊ ठीक।
तो फिर मोहिनी बहन, चंद्रमणि दादी जी और मोहिनी बहन आए थे। मैं आपको और एक बात कहूं कि बड़ी दादी भी आई थी, एक मेला हुआ था, बड़ी दीदी,
बड़ी दीदी,
बड़ी दीदी को तो आप लोग ने देखा नहीं होगा, काफी लोग आपने देखा है, दर्शना बहन ने देखा है। तो फिर बड़ी दीदी आई थी, बड़ी दीदी और बड़ी दादी दोनों आए थे, हमने एक मेला लगाए थे, बहुत बड़ा उस समय मेला लगते थे, बड़े बड़े मेले लगते थे
जी।
तो मेला लगाए थे, मैंने एक झांकी सजाया था, खुद मेहनत करके सजाया था मेले में। मेले में आपको सच बताऊं, कोई भी मेले में जो सजाते थे ना, खुद मेहनत करके सजाते थे। इतने भाई बहन होते थे मेरे साथ, माने झुंड की झुंड, जैसे एक मिलिट्री जैसे फोर्स होते थे, सब मेला लगा देते थे रातों रात। तो मेला लगाए थे, मेले में मैंने एक पेंडल सजाया था, इनोग्रेशन पेंडल राखी सजा के, माने झूला झूला के कृष्ण राधा कृष्ण को बिठा के, बैकड्रॉप में एक सीन वगैरह देके चांद सितारे दिखाई देते थे, इतना सुंदर था। तो बड़ी दीदी को बड़ा पसंद आया, कि बड़ी दीदी ने पूछा कि ये झांकी किसने सजाया, तो उसको बुलाओ। तो मेरे को बुलाए, दीदी बोलती है कि आप मधुबन चलो। समझे, आप मधुबन चलो। मैंने कुछ कहा नहीं, मेरे मन में तो था कि मधुबन
तो जाना नहीं है।
तो मैं चुप रह गया। फिर मेरे मन में था नहीं जाऊंगा। बड़ी दादी भी बोली मधुबन चलो। मेरा मन में था मैं नहीं जाऊंगा, मैंने नहीं जाऊंगा, जिद भी था। तो जो मैंने कहा कि ऐसे एक्सीडेंट हो गया, तो मैं थोड़ा रिकवरी किया, स्वस्थ होने लगा। तो फिर चंद्रमणि दादी और मोहिनी बहन आए थे, तो उन्होंने मेरे को बोला कि आप मधुबन चलो, थोड़े दिन चलो, आप जाने से वहां आपका तबीयत ठीक हो जाएगा। हैं, कुछ दिन रह के फिर आ जाना। मैंने कहा नहीं, मैं मधुबन नहीं जाऊंगा। उस समय तो थोड़ा सबसे परिचित हो गया था, तो मैं मधुबन नहीं जाऊंगा, मेरे को मधुबन में
थोड़ा सा अभिमान आ गया होगा। कितनी सेवाएं
मुड़ी में कर रहे हैं, अभिमान भी हूं जाके वहां भी जाके क्या सेवा करूं। और मेरे को एक उस समय क्या है मालूम है, मधुबन से जो आते थे उनके प्रति बहुत क्या कहते हैं, आप जानते हैं अगर हम सेंटर में होते हैं और मधुबन से आते हैं तो भावनाएं कैसी होती हैं, जैसे कोई फरिश्ते आए हैं, देवता आए हैं। तो मेरे को थोड़ा इन्फीरियरिटी भी फीलिंग था कि यहां जाके मैं कैसे, इतने अच्छे अच्छे भाई बहन है, इतने मैंने क्या कहूँ, उनके हाई क्वालिटी, उनके स्टेटस, मैं उनके साथ कैसे ये रह सकूं। ये भी था और मन में जिद भी था मैं मधुबन नहीं जाऊंगा। और मैं जहां पर था ना, बहने मेरे को इतना अच्छी तरह से रखते थे, जस्ट लाइक ए प्रिंस। मैं क्या खाऊं, कहाँ जाऊं, कहाँ सोऊं, क्या करूं।
तो मधुबन कब आए भाई साहब आप, मधुबन कौन से सन में आ गए थे?
मधुबन में 73 के बाद आया। तो फिर क्या हुआ, तो जब चंद्रमणि दादी और मोहिनी बहने आए थे, उन्होंने मेरे को बोला कि तुम चलो 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 चलो, पीछे पड़ गए। मैंने बोला नहीं जाऊंगा ना, बोल दिया मैंने भी ऐसे थोड़ा आवाज में बोल दिया। तो हमारी जो इंचार्ज वहां की बहन जी थी, वो भी मेरे पीछे पड़ गई कि तुम जाओ, जाने से तबीयत ठीक हो जाएगा। अरे मैंने बोला, मैंने सोचा जो मैं इतना यहां सेवा कर रहा हूं दिन रात है, और इनको इतना मदद कर रहा हूं, ये भी मेरे पीछे पड़ गए कि जाओ 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 जाओ। इनको भी कोई भारीपन आ गया है,
इनके ऊपर भी मैं भारी पड़ गया।
तब जब उन्होंने कहा कि तुमको तो सिर्फ भगवान संभाल सकता है, समझा, मैंने बोला ठीक है। फिर मैंने बोल दिया देखो आप मेरे को भेज रहे हो, मैं जा रहा हूं, लेकिन मैं जाऊंगा, लेकिन और ये शहर में वापस नहीं आऊंगा। भले दूसरे किसी शहर में चला जाऊंगा, लेकिन इस शहर में और मैं वापस नहीं आऊंगा, ये बोल के गया।
तो यहां आने के बाद
फिर मधुबन गए, आया नहीं, फिर
आए नहीं मधुबन।
फिर क्या हुआ, फिर जब मधुबन गया तो बड़ी दादी ने क्या की, मेरे पीछे दो सिक्योरिटी लगा दिए कि ये कहीं चला नहीं जाए, समझे, क्योंकि तबीयत भी ठीक नहीं था। तो इन्होंने पहरेदार लगा दिया कि भाई देखो इसको कहीं गेट से बाहर नहीं जाने देना है। मोहिनी बहन भी बोल दी कि इसको कहीं गेट से बाहर नहीं जाने देना, इसकी तबीयत ठीक नहीं है, जब तबीयत ठीक होगा फिर हम भेजेंगे। तो फिर मेरा धीरे धीरे तबीयत ठीक होने लगा, मैं सबसे फिर घुल मिल के रहने लगा, सेवाएं जो भी थोड़ी बहुत, कभी लिटरेचर में, कभी पहरे में, कभी रोटी में, कभी धोबी घाट में। उस समय धोबी घाट में वो कपड़ा राजू भाई के साथ हम सटका लगाते थे, मटका, वो भट्टी चढ़ाते थे, आजकल सिस्टम ऐसे नहीं था। धोबी घाट का कपड़े जैसे लगाते हैं ना, धोबी घाट लगाते हैं, तालाब में जाते हैं,
तालाब के पास पत्थर के ऊपर
सुखाते हैं, ऐसे हम लोग करते थे, कपड़े सटका लगा के सफाई करते थे भाई बहनों का। तो फिर क्या हुआ, तो मैंने धीरे धीरे, लेकिन मेरे मन में रहा, मैं अचानक यहां से गया, माने अचानक कैसे गया, मैंने कहा ना मैं इंडिपेंडेंटली यहां रहता था, घर मकान किराया मेरा सब कुछ व्यवस्था सिस्टम था, लेकिन मैंने जब गया ऐसे ही उठ के चला गया, माने मैंने देखा नहीं, ये किराए का मकान मैंने ले रखा है, इसमें मेरे को किराया देना है, इसमें मेरा सामान पड़ा है, मैंने कुछ नहीं देखा। है, फिर बाद में बहनों ने वहां से किराया देखे, मेरा गैस सिलेंडर जो था उन्होंने, साइकिल जो भी था उन्होंने सेंटर पर ले आए।
जब आ गए, जब मधुबन आ गए, डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट में सेवा स्टार्ट कर दी।
हाँ,
फिर अकाउंट्स में कैसे आए?
फिर सुनिए, फिर जब मैंने मधुबन दादी जी को बोला बार बार, दादी जी मेरा टिकट बना दीजिए, मेरे को जाना है।
अच्छा, वापस?
हाँ। मैं बोला, मैं, मेरे को मधुबन में रहना नहीं था। मैंने बार बार बड़ी दादी को बोला, दादी जी मेरे टिकट बना दीजिए, मेरे को जाना है। फिर दादी जी बोलेगी, अच्छा ठीक है बैठो, मैं टिकट बना दूंगी। फिर थोड़े दिन जाएगा, फिर दादी जी के पीछे पड़ूंगा, दादी जी टिकट बना दीजिए ना, मैं जाऊंगा। फिर थोड़े दिन के बाद बोलूंगा, दादी जी एक बार गुस्सा कर ली, चुप बैठो। कब जाने का है दादी जी को पता है, दादी जी टिकट काट के देगी। टिकट कटा नहीं है, मैं आया नहीं। समझे? इसी तरह से मैं मधुबन में हाईजैक करके मेरे को ले लिए और वहां मेरे को रख लिया।
कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं ना जिसको ऐसे ही रखा जाता है, तो वैसे में एक्सेप्शनल है
नहीं,
भाई साहब।
आज जो कहते हैं ना, कैसे आपने डेडिकेशन आपका कैसे समर्पित कैसे हुए, मेरा बिल्कुल समर्पित का लक्ष्य नहीं था। इवन कि आफ्टर दैट ऑल्सो, दादी जी टिकट नहीं करने के बाद मैं 1992 में पासपोर्ट बनाया है, चला जाऊंगा चुपचाप यहां से। मैं सिंगापुर के लिए टिकट भी बनाया, वहां सिंगापुर में हमारे कोई जान पहचान व्यक्ति रहते थे। ये पासपोर्ट मेरा जो आया, ये पहुंचा यशुदादी के पास। पोस्ट में आता था उस समय, रजिस्टर्ड पोस्ट में। यशुदादी ने दादी को दिया, दादी जी ने क्या किया, जानकी दादी को पकड़ा दिया और जानकी दादी मेरा क्लास ले ली 2 घंटा। समझे? 2 घंटा क्लास ले ली।
ये वही बात हो गई ना, जैसे दादी जानकी को बाबा ने कहा था ना कि आपको विश्व की विदेश की सेवा करनी है, तो दादी जानकी ने कहा क्या कहा था कि मैं विदेश नहीं जाऊंगी, तो बाबा ने कहा था मैं दूसरी जनक कहां से लाऊं, तो वैसे ही बाबा ने कहा दूसरा कहां से लाऊं भाई साहब।
फिर क्या हुआ,
पासपोर्ट ही चुरा के रखी।
दादी जानकी जी ने जब कहा कि भाई तुमको लंदन जाना है, अमेरिका जाना है, जहां जाना है हम तुमको भेज देंगे, समझे ना। मैंने बोला, ये भी बोला, मैं और विदेश भी कहीं नहीं जाऊंगा। नहीं, फिर मेरे को जबरदस्ती विदेश में भी बुलाया, समझे। 2015 में फिर मैंने ब्रिटेन गया, अमेरिका, कनाडा, ये सब होके आया। उस समय दादी जी ने प्रोग्राम बनाया है। मैं ये भी दादी जी को, मैं बोला रखो पासपोर्ट, मेरे को नहीं जाना है अभी कभी है
जी।
लेकिन इसी तरह से मेरा, मैं कहीं समर्पित होने के लिए कोशिश भी नहीं किया कभी,
फिर भी हो गए।
फिर भी बाबा ने,
बाबा ने छोड़ा के नहीं, और बाबा के कमाल,
बाबा पकड़ के रख लिया।
दूसरा भाई साहब कहां से लेके आते बाबा, इसलिए भाई साहब को पकड़ा रखा। जैसे दादी के लिए बोला था ना, दूसरी जनक कहां से लाऊं।
ये फिर बोल रहे हैं कि अकाउंट्स डिपार्टमेंट में कैसे आया। हम तो कोई उस समय आते थे, कोई सेवा का कैटेगरी नहीं होता था कि मैं पर्टिकुलरली इस सेवा के लिए आया हूं। मधुबन में जो आते हैं, जिसको जो सेवा दिया जाता है वो करते हैं। आज आपको पहरा देना है, पहरे में भी आज पानी गर्म करना है, सवेरे पानी भी गर्म करो। ठंडी थी उस दिनों में बहुत, आजकल थोड़ा कम हो गया। कभी रोटी बनाना है, रोटी बनाओ। कहीं भी सेवा देते थे, सेवा करना होता था। तो मैं तो आराम से सेवा करता था, मैं को कोई इच्छा भी नहीं थी कि कहीं अकाउंट डिपार्टमेंट में मैं जाके सेवा करूं। रमेश भाई उषाबेन के साथ मेरा थोड़ा जान पहचान भी था, ऐसे ही सेवा के कारण वो भी आते जाते थे। कभी कितने बार
भाई साहब, स्टार्टिंग में विश्व रतन दादा अकाउंट्स देखते थे, रमेश भाई तो बाद में शायद देखते थे ना। तो उस समय आप उनके साथ बहुत क्लोजली काम किए।
बहुत क्लोजली काम किया,
तो उनका अनुभव सुनाए।
मेरा वहां अकाउंट्स डिपार्टमेंट में जाना कैसा हुआ ना, एक बार ये हमारे दिल्ली के कौन, सुमन बेन के पिताजी सुंदरलाल जी ये RERF का, राजयोग एजुकेशन रिसर्च फाउंडेशन का काम देखते थे। मैनुअली लिखते थे, रजिस्टर उस समय लिखा जाता था, मैनुअली लिखते थे रजिस्टर। जब रजिस्टर लिखते थे तो उन्होंने किसी, सुंदरलाल जी बीमार पड़ गए, बीमार पड़ गए तो फाउंडेशन का काम थोड़ा स्लो हो गया, माने ना कि बराबर, कोई करने वाले थे नहीं उस समय, हैंड्स भी बहुत कम मिलते थे। मैं सोचता हूँ एट दैट टाइम मधुबन में पर नियर अबाउट 125 सिर्फ सेवादारी थे, 120 सेवादारी थे टोटल, माने था ही नहीं, ना ज्ञान सरोवर था, ना शांतिवन था, कुछ भी नहीं था, समझे ना, सिर्फ मधुबन ही था। आप लोग ने तो मधुबन का वो मिट्टी का आंगन किसी ने देखा नहीं होगा, बाबा का पुराना कुटिया भी किसने नहीं देखा होगा, ना बाबा का कमरा पुराना किसी ने देखा होगा, नहीं देखा होगा, बहुत कम कोई किसी ने देखा होगा तो होगा।
तो इतना जिद करने के बाद भी आप यहाँ रह गए, तो इसके पीछे क्या गाइडिंग फोर्स था?
क्या चीज,
इतना जिद करने के बाद भी कि मधुबन में रहना नहीं है मुझे, हाँ। मुझे जाने दो, मेरा टिकट बना दो, उसके बाद भी आप मधुबन में रुक पाए, तो अंदर से क्या फीलिंग्स था?
सिर्फ ये दादी जी का जो स्नेह और प्रेम प्यार था,
स्नेह और प्यार, वो सूक्ष्म रूप में हमें थोड़ा बताएं, दादी का प्यार हो।
यही थोड़ा मेरा सॉफ्ट कॉर्नर है।
अब आप, कुछ बातें ऐसी होती हैं जो समझ लेना चाहिए, कुछ शब्दों में बयान नहीं कर सकते लेकिन एक्सप्रेशन से बयान हो जाते हैं। एक बार डॉक्टर सचिन ने पूछा था दादी जानकी से, दादी जानकी ने कहा अमृत विलास बाबा से बहुत अच्छा रूह रिहान किया, तो दादी ने कहा, डॉक्टर सचिन ने पूछा क्या किया, तो दादी ने क्या जवाब दिया, मेरी नजरों से खींचना चाहते हो तो खींच लो, एक्सप्रेस नहीं कर सकते। सेम आप समझ सकते हैं,
दादी जी के नजर से आप कभी छिप नहीं सकते हैं, कभी भी छिप नहीं सकते हैं, कितने भी कोशिश करो, छुप के दादी जी बैठी है आंगन में, इधर से छुप के से चले जाएं, इधर आओ, उधर कहाँ जा रहे हो, यहाँ दादी जी बैठी है, दिखाई नहीं दे रहा है। दादी जी को पूछा, दादी जी की तबीयत ठीक नहीं है कि नहीं, दादी जी को गुड मॉर्निंग किया, यही चीज होता है। जो मैग्नेट की तरह खींच के रख लेते, कई बार मेरे को कहते हैं कि दादी दीदियों के बारे में सुना हूं,
दादी गुलजार जी के बारे में सुनाइए
मेरे को, मैं कहता हूं कि और किसी के बारे में पूछो, लेकिन
दादी गुलजार जी के साथ ही बहुत क्लोज रहे हैं आप,
बहुत क्लोज रहा,
थोड़ा सा बताइए।
हम आपको ये रिवील नहीं करना चाहता हूं, लेकिन ये चीज है, गोलक भाई है और मैं हूं, कहते थे कि दादी जानकी का गोलक भाई है तो गुलजार दादी का गोकुल भाई है। हमेशा दादी बुलाती थी गुलजार दादी जी, इतना क्लोज रहा दादी गुलजार जी के साथ, शायद ही किसी को ऐसा चांस मिला होगा, शायद ही कोई सा प्रोग्राम होगा जिसने दादी ने मेरे को बुलाया नहीं होगा। एक इतनी माने क्या कहते हैं, नजदीक में रह गए थे कि आज भी वो फीलिंग आ रहा है कैसे, लेकिन फीलिंग भले आए, लेकिन ये नहीं कह रहा हूं कि आज दादी हमारे साथ नहीं है, आज भी मैं महसूस कर रहा हूं, चाहे बड़ी दादी हो, चाहे गुलजार दादी हो, चाहे जानकी दादी हो, आज भी हमारे साथ है, हमको उनकी मदद मिलता है,
थोड़ा सा ट्रैक
उनकी जो प्रेरणा है वही मिलता है, उन्होंने पास में से बिठा के सुपे पे साथ साथ बिठा के जो सिखाया था वही काम आता है। ज्ञान तो दैट इज, आई थिंक इट इज ए सेकेंडरी फैक्टर, The primary is our family. The divine family, ये जो स्नेह जो प्रेम, बाबा जैसे कहता है कि बच्चे आप स्नेह के विमान में उड़ के आ गए मेरे पास, ये जो स्नेह है, यही स्नेह परिवार में, यही हमारा एक क्या कहते हैं इसको, अलौकिक जो बंडेज है, यही सबसे बड़ा ताकत देता है।
बहुत बड़ी बात बोली भाई साहब ने, ज्ञान और से ऊपर है
ताकत, में आत्मा 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 पर अटते रहेंगे, दैट इज नॉट पावर। हाँ, बाबा के ज्ञान वो चाहिए, देह अभिमानी अवस्था चाहिए, योग चाहिए, निरंतर योग चाहिए, अवस्था चाहिए, लेकिन उसके अलावा अगर वो चीज मैं कहूं कि ये स्नेह ये प्रेम ये अलौकिकता प्रैक्टिकल जीवन में दिखाई नहीं दे, ये महसूस नहीं हो एक दूसरे को, तो नॉलेज नॉलेज नहीं है। इसलिए दुनिया में भी क्या कहते हैं मालूम है, सविद्या विमुक्त है। विद्या उसको कहते हैं जो आपको मुक्ति दिलाता है, हर बात में छुटकारा दिला देता है। विद्या नॉलेज, नॉलेज इज सो पावरफुल। लाइट कहते हैं ना, नॉलेज इज लाइट, नॉलेज इज माइट, नॉलेज इज लाइट एंड माइट। अगर आपको अपने देह से मुक्त नहीं करा सके वो विद्या, वो नॉलेज, वो ज्ञान, तो किस चीज का ज्ञान है? दैट मस्ट बी देयर, इतने कॉन्शियस। इसलिए देखो बाबा ज्ञान देने के बाद भी अव्यक्तवाद दादा की मुरली सबने सुना है, क्या बाबा कहता है, समझा समझा, जो समझ गए हैं वो समझदार है। समझ चाहिए, नॉलेज की पराकाष्ठा चाहिए, समझ चाहिए, गहराई में जाना चाहिए। खाली आत्मा आत्मा का रटने से नहीं होगा, सकल से सूरत से अवस्था से चाल चलन से। मैं विश्वरतन दादाजी कहते हैं ना, मैं दादाजी मैं इसलिए गया अकाउंट्स ऑफिस में, सुंदरलाल जी जो बात कह रहा था बीमार पड़े, तो रमेश भाई ने दादाजी को कहा, दादाजी गोकुल भाई इधर है, थोड़ा अकाउंट्स में मदद कर सकता है क्या? तो दादाजी ने मेरे को बुलाया कि गोकुल तुमको रमेश बोल रहा है कि तुम थोड़ा उनको अकाउंट्स में मदद करो। मैं तो हर बात में हाँ जी करता हूँ, अभी ना जी नहीं किया किसी बात में, मुझे आजकल चलता है ना
4G सिर्फ रुकने में ना जी, रुकना नहीं है, जाना है उसमें ना जी, बाकी सब हाँ जी
हाँ जी हाँ, जो चलता है
सेवा में हाँ जी,
2G 4G 5G 6G हमारा चलता है मोबाइल हाँ जी का, समझा? तो हाँ जी किया मैंने, तो हाँ जी किया, तो फिर मैंने वो सेवा करने की चांस मिला, वो फिर रजिस्टर लिखा, फिर लिखते लिखते फिर रमेश भाई ने कहा कि अरे ये ट्रस्ट का काम थोड़ा बाकी पड़ा है, ये कर लोगे क्या? मैं बोला हाँ जी कर लूंगा, फिर ट्रस्ट का काम कर लिया। फिर विश्वरतन दादाजी उस समय संभालते थे, चेक ड्राफ्ट आते थे, नोट करते थे डायरी में, एक जगह डायरी में नोट करेंगे, एक जगह इंग्लिश में नोट करेंगे, एक जगह सिंधी में नोट करेंगे। मैं पूछता था दादाजी ये आप इंग्लिश में नोट करते हैं फिर सिंधी में नोट करते हैं? ना ये सिंधी में नोट करा हूँ किया हूँ ये यीशु दादी को दिखाने के लिए, तो जगह नोट करते
तो थे। भाई साहब जैसे उस समय में विश्वरतन दादाजी रमेश भाई साहब के साथ सेवा किया, फिर उस समय दौर भी आगे बढ़ा, फिर 2017 तक बाप दादा गुलजार दादी के तन में आए, उस समय तक का भी एक अलग दौर था। बाप दादा अव्यक्त रूप से स्थूल रूप में भी आके सेवाओं में हमें बल देते थे, मोटिवेट करते थे, गाइडेंस देते थे। उसके बाद अभी 8 साल करीब करीब हो गया, 2017 से 2025, अभी अब बस सूक्ष्म रूप से हमारे साथ हैं बाबा। तो उस समय की सेवाएं जब बड़े भाई साहब सब थे, विश्व रतन दादा थे, रमेश भाई साहब थे उस समय, और उसके बाद और अभी, तीनों में सेवाओं में क्या चेंजेस फील करते हैं आप?
चेंजेस यही है कि उस समय जो सेवा करते थे मधुबन में, जो सेवा था एक अलग प्रकार की, उसमें क्या कहते हैं मैं कहूं कि खुशी आनंद जोश था, है उस समय कोई इतने हैंड्स नहीं थे, फिर भी अकेले सब कुछ कर लेते थे। आपको तो मालूम होगा उस समय इतने बड़े बड़े रजिस्टर, मोटे मोटे रजिस्टर होते थे, कैलकुलेशन करने में कितना दिक्कत होता होगा मैनुअली, मगर मैंने विश्वरतन दादाजी को देखा मैनुअली इतना आसानी से कैलकुलेशन कर लेते थे, कोई कैलकुलेटर भी नहीं कर पाएगा। मेरे को उनसे भी बहुत प्रेरणा मिला, दादा विश्वरतन जी से, क्योंकि मैं साथ साथ रहता था। क्योंकि हमारी बड़ी दादी कहती थी कि दादा, क्योंकि दादा की चाल चलन इतना परफेक्ट था हर बात में, खाने में, पीने में, सोने में, चलने में, बोलने में, इतना परफेक्शन था। मैं रेयर आज दिन तक कोई ऐसा आत्मा देखने में नहीं मिल रहा है, सच बता रहा हूं। क्योंकि यू जस्ट इमेजिन, कम खर्च वाला मशीन किसको कहते हैं, जो हैदराबाद सिंध कराची में जो ब्रूस और सेविंग सेट होगा चल रहा है, आज दिन तक उनका मधुबन में चलता था, वो ब्रूस में इतनी सी वो उसका रह गया होगा,
ब्रश का हेयर
हेयर जो है ना, इतना सा रह गया होगा, तो भी उसको काम लेते थे। कितनी इकोनॉमिकली वो चलते थे, कपड़े पहनते थे। मैं बोला दादा आप कपड़े नहीं लेते हैं, ना क्या करूं, 20 साल हो गया फटता नहीं है। कैन यू इमेजिन, पानी की कमी हुई, दादी ने कह दिया भाई 2 दिन में एक बार कपड़ा धुलाई होगा, एक्यूरेट कोई चीज को फॉलो करना मैंने किसी को देखा नहीं इतनी एक्यूरेसी। 5 पैसा जेब में नहीं होगा, आप अभी जहां से भी आए वहां जा सकते हैं,
बिल्कुल नहीं।
या कोई कहेगा आप यहां से वहां जाओ, मधुबन से जा सकते हैं, लेकिन मैंने दादाजी को देखा जेब में 5 पैसा नहीं है। एक बार इंदौर जा रहे थे, मैं दादाजी को बोला दादाजी आप इंदौर जा रहे हैं, 100 रुपया रख लीजिए जेब में, कहीं जरूरत पड़ेगा आपको। बोला क्या करूंगा पैसा, यहां से गाड़ी लेके स्टेशन छोड़ देगा, स्टेशन में बैठ के वहां चला जाऊंगा, वहां से सेंटर बहने ले जाएंगे, फिर बहने छोड़ देंगे, फिर यहां आ जाऊंगा, पैसे की क्या जरूरत है।
तो भाई साहब यही पूछना चाह रहे हैं कि इसमें डिफरेंसेस क्या देख रहे हैं उसको कैसे। अब जैसे उस समय तो आप बोले कि 2 दिन में कपड़े साफ होते थे, पैसे भी जरूरत नहीं पड़ता था, लेकिन अभी तो संत को कैसे साइमल्टेनियसली कैसे मैनेज करते हैं। हम लोग तो छोटा सा बैलेंस शीट बनाने में हालत खराब हो जाता है। किसी कंपनी का छोटा सा मैनेज करने में, अपने बॉस को मैनेज करना इतना टफ लगता है, और आप इतने आसानी से कैसे कर लेते हैं।
बाबा कैसे करा रहा है पता नहीं, सच बता रहा हूँ। आप लोग को कोई चीज वंडर लगता होगा, हमको तो इतनी मैंने सहज लगता है हर बात, हर सेवा वंडरफुल है। कैसे बाबा कराता है मैं आपको सच बताऊं, जब मैं ये ज्ञान सरोवर बना, इसका अकाउंटिंग भी किया, फिर शांतिवन जब बना उसका भी अकाउंटिंग करने के लिए मेरे को मिला, मैं अकेला था, कोई नहीं था मेरे साथ। यू कैंट बिलीव, मैं अपना जो छोटा सा कमरा था या जहां काम करता था, कंप्यूटर था, कंप्यूटर तो बाद में आया, और कंप्यूटर भी किसने सिखाया नहीं, खुद सब कुछ सीखे, कहीं ट्रेनिंग नहीं लिए हैं, ये सब एटाली फलाना ये निका डीबीएस में करते थे, फिर धीरे धीरे लोटस 1 2 3 था क्या क्या था, फिर धीरे धीरे करते करते कंप्यूटर भी खुद सीख गए, अकाउंटिंग ये थोड़ा बहुत प्रोग्रामिंग ये सब सीख गए खुद, किसने सिखाया नहीं कोई चीज, सीखते सीखते करते गए सारा काम। मैं अकेला करता था, जिस ऑफिस में करता था वहां एक छोटा सा खटिया रखा था, मैं सच बताऊं जब थोड़ी बहुत थकावट होती थी खटिया में सो जाता था, फिर आंख खुले फिर ऑफिस में बैठ जाता था सेवा करने के लिए। एक उमंग था उस समय कि भाई बाबा का सेवा है, ये किसी का सेवा नहीं है, बाबा ने सेवा दिया है, दादियों ने सेवा दिया है। एक पता नहीं मैं क्या बताऊं आपको उसके बारे में, कैसे वो माने नेचुरली वो अपने आप कैसे पैदा होता था, मैं कैसे बताऊं इसको आपको। इट इज ए नेचुरल, जैसे एक मन में उमंग आता है ना, खुशी होती है ना करने के लिए, वो नेचुरल रूप में था, कोई मैंने कोई क्रिएट नहीं किया जाता था उस चीज को। मान लो आज दादी ने कह दिया ये काम करने के लिए, झुंड के झुंड सब खड़े हो जाते थे, है भाई ये चावल का ट्रक आया है अनलोड करना है, कोई लेबर तो नहीं थे उस समय, हम लोग खुद 100-100 किलो का बैग लेके चावल का बैगेज उतार लेते थे सब मधुबन वाले। आज कोयले का रेक आया, सब अब रोड से लेके यहाँ तक कोयले का सब लोड अनलोड करके ट्रक में देके सब आ जाते, एकदम भूत बराबर दिखते थे जब कोयले का अनलोड करते थे। तो ये सब कोई कहने की बात नहीं होती है, भगवान बाबा के लिए जहाँ स्नेह प्यार होता है ना, मर मिटने का जहाँ होता है ना सेवा के लिए, तो अपने आप ये हो जाता है। मैं पता नहीं यार, उनके शब्दों में उनके स्थिति अवस्था में ताकत होगी जो दूसरों को भी ताकत दे देता है, भले मेरे में वो क्वालिटी नहीं है, फिर भी आप दादियां कह देते थे ये करो, हम करने के लिए कूद पड़ते थे, तो काम हो भी जाता था। कैसे हुआ, कैसे माने क्या, किसको क्या बताएं कैसे हुआ, और सब काम टाइम पर भी हो जाता था, समय पर हो जाता था, ऐसे ही आराम से सेवाएं हो जाती थी। अभी अभी उसके बाद भी रमेश भाई थे, रमेश भाई जब तक थे खुद जिम्मेवारी लेके करते थे, हमारा उस समय जिम्मेवारी थोड़ी बहुत कम थी, क्योंकि हमको सिर्फ क्या करता है डाटा फीडिंग करके दे देने का है, उस समय ऐसा था, जो भी है डाटा फीडिंग करके दे दो, वो फिर फाइनल अकाउंट कंपटीशन और इनकम एक्सपेंडिचर जो भी बैलेंस शीट तैयार कर लेते थे, तैयार करके। लेकिन उनका एक खूबी था, वो बाबा को जरूर पूछेंगे रिटर्न फाइल होने से पहले, दादी जी को दिखाएंगे और बाबा को संदेश देंगे कि बाबा ये रिटर्न फाइल होने जा रहा है, फिर रिटर्न फाइल होता था, फिर दादा और रमेश भाई मैनुअली होता था उस समय रिटर्न फाइलिंग, खुद जाके यहाँ इनकम टैक्स ऑफिस में दे के आते थे। फिर इनकम टैक्स की भी आपको मालूम होगा, किसी को कितना बड़ा यज्ञ के ऊपर आया, केस चला 5-7 साल तक, मैंने तो 100 बार गया होगा इनकम टैक्स ऑफिस में, उदयपुर दौड़ा होगा लेटर लेके। वो कमिश्नर जो थे वो गर्ग थे ना, एक गर्ग जी थे,
अच्छा,
उन्होंने अगेंस्ट में हो गए, ब्रह्मा कुमारी के अगेंस्ट में छोटी सी बात के लिए, तो फिर उसके लिए भी कितना रातों रात सब नए नए तरीके से सिलेबस बनाना, ये करना, किताबें छपाना, सब काम चला।
भाई साहब एक लास्ट प्रश्न समय को देखते हुए,
हाँ जी,
जैसे अभी करंट सिनेरियो में हम क्या देखते हैं कि जैसे बाबा तो बोलते हैं माया अर्थात 5 विकार, लेकिन दुनिया में माया किसको बोलते हैं? मनी, मनी को माया बोलते हैं, मनी को ही प्रायोरिटी देते हैं, उसी को माया समझते हैं दुनिया में। तो आज हम देखें अपने घर में भी फाइनेंशियल वॉर है एक तरह से, हर जगह देखेंगे, वर्ल्ड में देखें, थर्ड वर्ल्ड वॉर का तो डेट एंड टाइम फिक्स नहीं है, बट आप अभी देखेंगे कि पूरे वर्ल्ड में फाइनेंशियल वॉर छिड़ा हुआ है। सब फील कर रहे होंगे कि न्यूज में भी सुनते होंगे फाइनेंशियल वॉर छिड़ा हुआ है, उसका इंपैक्ट कंट्री पे पड़ रहा है, हर कंट्री पे, कंट्री से फिर उसके स्टेट पे, स्टेट से देखे तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आ जाए, डिस्ट्रिक्ट से समाज पे, समाज से घर में, घर में भी फाइनेंशियल वॉर है एक तरह से, भाई बहन के बीच आज कितने सारे केसेस चल रहे हैं, है ना। तो हम बाबा के ज्ञान में हैं, तो हम स्पिरिचुअलिटी को अपने इस ज्ञान को कैसे, इस फाइनेंशियल क्राइसिस को या फाइनेंशियल वॉर को कैसे ओवरकम करें इस ज्ञान के द्वारा? आपने तो कर लिया, आप आराम से बाबा के साथ कर, हम कैसे मैनेज करें? क्योंकि हमारे साथ तो हम वर्किंग है, हमें हर चीज मैनेज करना पड़ता है, दुनिया में रहना पड़ता है, दुनिया के बीच रहते हैं, तो हम कैसे मैनेज करें? लास्ट क्वेश्चन,
पर्सन टू पर्सन वेरी करता होगा, ये जो है व्यक्ति हर एक अलग अलग, इसमें अलग अलग प्रकार,
जब इस दुनिया में आ जाते हैं चार दीवारी में तो अलग होता है, जैसे इससे बाहर निकलते हैं ट्रेन में पैर रखते ही फिर वो दुनिया याद आने लगता है, सबके साथ ऐसा ही होता होगा शायद, तो उसको कैसे मैनेज करें उस दुनिया को?
एक 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 ये बताऊं, सुनाऊं? इसमें आप किस तरीके से इसको आप इंटरप्रेट करेंगे मेरे को अलग बात है। अलग गज धन सुना है, गज धन राज धन, धन धन हो कुबेर समान, गज धन राज धन, धन धन हो कुबेर समान, संतुष्टता की धन हो तो बाकी सब धन धूल समान।
वाह,
अगर ये कंटेंटमेंट नहीं है, बाबा ने जो सिखाया हमको, जो मर्यादाएं सिखाया है, इकोनॉमी कम खर्च वाला नशीन बाबा ने जो सिखाया, ये जो कंटेंटमेंट है, इवन के कभी कई बार हमको पुरुषार्थ में भी कंटेंटमेंट नहीं आता है, हम कर रहे हैं सही पुरुषार्थ, आप कर रहे हैं, आप अभी बैठे हैं, आए योग भट्टी किए हैं, ये सही है, लेकिन इसमें आपको जो संतुष्टता आनी चाहिए उतना ऊपर ले आएंगे तो आप संपन्नता की अनुभव कर सकते हैं। संतुष्टता में ही संपन्नता है,
संतुष्टता में ही संपन्नता है।
तो ये जो है कंटेंटमेंट एक लाइफ का है, हम तो इस चीज को कभी महसूस नहीं किया है कि कहां हमको कमी किस चीज की रह गई। ये इच्छा ही नहीं है तो कमी कहां रहेगी, कोई चीज की इच्छा नहीं है। कभी किसी चीज को कहीं कहीं हमने चाहना रखा होगा, यज्ञ में भी आके मैं नहीं सोचता हूं ऐसे कभी घटना घटी होगी। मैं किसी को बोला होगा कि भाई ये चीज की आवश्यकता है, जरूरत है हमको, खाने की ये चीज जरूरत है, या पहनने की ये चीज जरूरत है, या रहने के लिए ये व्यवस्था चाहिए। हमने किसी को कभी बोला नहीं है, तो बिना मांगे अगर मिलता है, सब कुछ भगवान दे देता है, तो क्या मांगू। और जितना दिया है मैं कभी तो उसको क्या कहता हूं, मैं समा नहीं सकता हूं दिल में कि वाह बाबा आपने कितना दिया। कभी मैं अपने पास्ट लाइफ को देखता हूं, जैसे मैंने अभी वर्णन किया, कभी पास्ट लाइफ लौकिक जहां से मैंने आया, जैसे कहते हैं ना जहां से, भाई आप अपने औकात को नहीं भूलना चाहिए। अगर मैं उस तरफ नजर डालता हूं और आज की नजर डालता हूं तो मैं ये क्या कहते हैं जो वास्ट डिफरेंस है मैं उसको वर्णन नहीं कर सकता हूं। तो मैं क्या चाहूं भगवान से, और जो भगवान ने इतना दिन बिना चाहे बिना मांगे अपने आप ने भगवान जब दे दिया, और जो पाना था सो पा लिया। अगर जो गीत गाता हूं दिल से, ये दिल से गाता हूं या ऐसे ही सिर्फ भय से, व्हाट्स दैट, दिल से गाता हूं यहां से या सिर्फ मेरी यहां से भय से मुख का, तो ये जो खुशी है, ये जो आनंद है, ये कहीं नहीं मिलेगा। तो भगवान इतना भरपूर किया, सबको किया है, आपको नहीं किया, ऐसा इनको नहीं किया, कोई किसी को बाबा ने कहीं पर्सनैलिटी नहीं किया कि भाई इनको दो, इनको नहीं दो, इनको नहीं दो। मगर वो जो लेने की जो कैपेसिटी है,
कैचिंग पावर सबकी डिफरेंट,
जो बाबा कहते हैं सच्चे दिल पर साहेब राजी, अगर दिल सच्चा रखो और देखो साहेब राजी है कि नहीं, एक कदम बढ़ाओ हजार कदम बाबा की मदद है कि नहीं, इसको प्रैक्टिकल कितना हमने अनुभव किया। मैं तो कभी ऐसा, अगर मैं अतीत को जब देखता हूं ना, पास्ट को, मेरे को गर्व होता है, खुशी होती है, अरे क्या अरे दिन बीते हैं, उसके आधार पर मैं सचमुच में कहता हूं कि आज की जिंदगी भी टिका हुआ है। क्या खुशियों के दिन थे वो, क्या दादियों के साथ दिन थे, पल थे वो, क्या बाबा ने क्या क्या वरदान दिए हैं, ये सब जब याद करता हूं ना, मैं देखता हूं कि उसी के आधार पर, और ये सब की स्नेह सहयोग दुआएं हैं। इतना चाहता हूं हमेशा बुद्धि में रहता है कि हमारे से कोई असंतुष्ट नहीं हो, हमारे खातिर किसी का संकल्प नहीं चले। मैं क्या करता हूं, क्या देखता हूं, कहां बैठता हूं, क्या खाता हूं, किसी का संकल्प नहीं चले। अगर किसी का संकल्प आपके लिए नहीं चलेगा तो आपका योग सहज लगेगा, सहज योगी बन जाएंगे आप। अगर हमारे लिए किसी का व्यर्थ संकल्प चल रहा है, हमारी मन की अवस्था सिर्फ बिगड़ती है। अगर हमारा भी किसी के प्रति व्यर्थ संकल्प चलता है, आप संकल्प को सुधार लो, आपका अवस्था भी सुधर जाएगा। उनके प्रति शुभ भावना शुभकामना रखो, आपका अवस्था भी सुधर जाएगा, आपको अच्छा फीलिंग आएगी, महसूस होगी आनंद की खुशी, माने खुशियों की फुहारे आप अनुभव करेंगे। लेकिन किसी के प्रति हम व्यर्थ संकल्प भी नहीं चलाए, और ड्रामा की पाठ तो बाबा ने हमको पढ़ाया है, और ये ड्रामा की जो ढाल है, बिंदी, जो तीन बिंदी बाबा ने सिखाया, ये इसको भी अगर बुद्धि में रखें तो भी अवस्था अच्छी रहेगी। और ज्ञान की जितना मनन चिंतन करेंगे मन में, जितना मनन चिंतन करेंगे तो उतना अवस्था अच्छी रहेगी। खुशी की यही खुराक है मनन चिंतन, और कुछ नहीं है। जैसे मन होता है ना, आप नाव को इधर लगा दो क्या होगा, नमन होगा, नौ को उधर लगा दो मनन।
अच्छे से भाई साहब ने
सब हमेशा निर्माण रहो है और मनन चिंतन करते रहो, निर्माण था समझ। कोई जितना निर्माण रहेंगे ना उतना अपना क्या कहते हैं खुद फील करेंगे कि आप कितने अच्छे हैं, खुद को खुद सर्टिफिकेट। पहले इसलिए बाबा ने कहा था पहले अपना साक्षात्कार कराओ फिर बाद में बाबा का साक्षात्कार कराना बाद की बात है, पहले अपना साक्षात्कार कराओ कि मेरा अवस्था कैसी बनी है, मैं क्या बनी हूं, हूं मैं अपने आप में कुछ हूं या किसी के सहारे लेकर कुछ हूं, इंडिपेंडेंटली इंडिविजुअली मेरा एंटिटी क्या है, सत्ता क्या है, उसके लिए मेरे को गर्व है। मैं इसलिए मैं आपको सच बता रहा हूं एक छोटा सा बात, मैं हमेशा अकेले में रहना बहुत पसंद करता हूं, मैं ऐसे नहीं आता हूं स्टेज पर या किसी के सामने कुछ बोलने के लिए नहीं आता हूं। तो अकेले मैं देखता हूं मैं अकेले में क्या हूं, मैं जब अकेले में रहता हूं मेरा अवस्था मेरा स्थिति है मैं क्या हूं, या मैं संगठन में रहता हूं तो मैं खुश रहता हूं।
आप आएंगे नहीं तो हमें मोटिवेशन कैसे मिलेगा?
नहीं मोटिवेशन इट इज नॉट बाय वर्ड्स, मोटिवेशन की कोई जरूरत नहीं है। मैं सोचता हूं कुछ ऐसे ही हमारे जैसे आप किसी आप देखिए कहीं आपने मंदिर में जाते हैं मूर्ति है मूर्ति है मूर्ति के सामने जाते हैं मूर्ति के सामने जाते हैं प्रणाम करते हैं जो सिर झुकाते हैं कोई गाली भी देते हैं ऐ भगवान आपने अच्छा नहीं किया हमारे लिए ऐसा ऐसा किया, कोई महिमा भी करते हैं उसके ऊपर कोई असर पड़ता है? अभी बिकम ए स्टैच्यू तपस्वी बन के आप बैठ जाइए, आत्माएं आपके पास स्वतः जैसे हम सुनते थे ना मनोहर दादी क्या सुनाती थी, पहले कहीं ज्ञान सुनाने थोड़ी जाते थे, गंगा किनारे बैठ के क्या करते थे आत्माओं को आह्वान करते थे, हे आत्माएं आओ हे आत्माएं आओ, आत्माएं आ जाते थे। व्हाट इज दैट सिचुएशन, वो उनका कैसी अवस्था थी? मैं अभी वो बात को सोच रहा हूं कि ये जो थे कैसी उनकी स्थिति उस समय थी जो आत्माओं को आह्वान करके भी बुला लेते थे, क्या पावर थी उन आत्माओं में। तो आत्मा में उस शक्ति को बढ़ाना है, जो डिवाइन पावर है उसको बढ़ाना है, और दैट इज ओनली पॉसिबल बाबा से कनेक्ट रह के बढ़ा सकते हैं। ओनली रिमेन कनेक्टेड विथ बाबा, ऑलवेज कनेक्टेड, रिमेन कनेक्टेड, नथिंग एल्स, और कुछ नहीं चाहिए। यही अभाव है। आप जानते हैं ज्ञान मार्ग में सबसे बड़ा कठिन सब्जेक्ट है योग, सबसे बड़ा कठिन सब्जेक्ट है योग। ये जो योग है उसके ऊपर कैसे हम योग के ऊपर सिद्धि प्राप्त करें, और उसकी विधि पूर्वक जाके सिद्धि प्राप्त करें। मैं जो हूं बाबा कहता है, मैं जो हूं जैसा हूं ऐसा समझ के मेरे को कोटो में कोई कोई में कोई याद करते। अब व्हेन आई एम सिटिंग इन योगा, मैं सो क्या सोचता हूं, अगर मैं संगठन में बैठता हूं, मैं एक छोटा सा बात बता देता हूं, मैं उस समय सोचता हूं इतनी आई एम फीलिंग, माने सो पावरफुल मेरे को फीलिंग आता है, आई एम द ओनली वन इस समय जो कि एकाग्र होके मैं जो हूं जैसा हूं बाबा से जो बाबा कहता है उस हिसाब से मैं आई एम कनेक्टेड, यहां कोई नहीं होगा। मैं मेरा इंटरनल फीलिंग की मैं बात बता रहा हूं, ये कोई मैं ये नहीं कह रहा हूं एक्सप्रेस जो कर रहा हूं, ये मेरा इंटरनल जो फीलिंग आता है ये फीलिंग मैं बता रहा हूं। अब मैं जब कोई काम करता हूं मेरा बाबा में दैट मेरा बाबा दैट इज जस्ट लाइक ए करंट इज रनिंग इन माई बॉडी, ये जो फीलिंग इंटरनली मैं फीलिंग की बात बता रहा हूं, बाबा के सिवाय कुछ नहीं है। ये जो फीलिंग इंटरनली फील कर रहा हूं मैं सोचता हूं शायद उसके वजह से थोड़ा
जी भाई साहब
ठीक लग रहा है मेरे को।
तो आपने नोटिस किया होगा भाई साहब ने बहुत ही कम शब्दों में ही, सब भले कम हो लेकिन बहुत ही पावरफुल रहा होगा, वाइब्रेशंस फील किया होगा आपने। तो भाई साहब का बहुत बहुत धन्यवाद, सभी जोरदार ताली से स्वागत करेंगे। शब्द चाहे जैसे भी हो लेकिन बहुत ही पावरफुल इमोशनल इमोशन से भरपूर हो गए होंगे आप। थैंक यू सो मच भाई साहब।
अभी तो बहुत सारे हमारे डिपार्टमेंट में बहुत सारी भाई बहने सहयोग से सेवा हो जाती है, कैसे होता है, क्योंकि दादी जानकी जब यहाँ थी होती थी पांडव भवन में, हर गुरुवार को अकाउंट्स डिपार्टमेंट वालों को जरूर बुलाएगी मिलने के लिए, हर गुरुवार को। और उसी गुरुवार को लंदन भी बात करेगी वहाँ, अगर कुछ मधुबन में नहीं आया होगा, वो चारू बहन वहाँ संभालती थी, चारू अब तक मधुबन में आया क्यों नहीं है दादी बोलती थी, तो दादी मिलती थी उस समय। तो हम भी कभी कभी पूछते थे, दादी आप यहाँ बैठे हो और वहाँ आपकी सेवाएं लंदन में कैसे चल रहा है, मैं पूछता था कभी कभी, दादी आप यहाँ बैठे हो लंदन में सेवाएं सब चल रहा है, कैसे चल रहा है? बाबा चला रहा है, क्या चीज मालूम है? उम्मीद, भरोसा। उम्मीद और भरोसा रखो ना, हर आत्मा ही अपने आप कर लेते हैं। तो ऐसे ही हमारे यहाँ भी अकाउंट ऑफिस में ये जो भाई बहन है, हम भी उम्मीद और भरोसे उनसे सीखा है कि भाई उम्मीद और भरोसा रखने से भले ब्लाइंड फे तो
थैंक यू सो मच भाई साहब का।
मैंने क्या है, मैं सच बताऊं, ये मेरी थोड़ी कमजोरी है, मैं जो भी मिला है मेरे को
भाई साहब ने शब्दों में नहीं नैनो से एक्सप्लेन कर दिया।
क्योंकि एक एक सीन अगर मेरे को याद आता है तो बहुत बड़ा भारी पड़ता है। ओम शांति।
ओम शांति।
बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी का, जोर से तालियां, बहुत बहुत शुक्रिया। हमें भी दादी जी के सानिध्य का अनुभव कराने का बारंबार शुक्रिया। मैंने एक चीज दादी जी का सुना किसी से, वो तो याद नहीं किससे, कि एक बार दादी जी को कोई पीस पार्क मुन्नी दीदी जी ले जा रहे थे, कुछ प्रोग्राम था, तो दादी जी ने कहीं चप्पल उतारे थे अपने और दादी जी नंगे पैर जा रहे थे, तो कोई नॉन बी के जो फ्रेशर्स हैं उनका कुछ गैदरिंग रहा होगा, तो उन्होंने दादी जी की चप्पल उठाई थी और पूछा जोर से, ये किसकी चप्पल है? तो आवाज आई, सभी पहचानते थे जो बीके हैं, उन्होंने कहा ये हमारी दादी जी की चप्पल है। तो उस जो नए भाई थे उन्होंने कहा कि ये जिसके चप्पल है ना वो बहुत पवित्र आत्मा है, वो बहुत श्रेष्ठ आत्मा है, वो इंटरनली इतनी पावरफुल है कि उनके जितना पावरफुल आज तक मैंने नहीं देखा। तो ये थे हमारे दादी जी और उनके द्वारा उनके सानिध्य में पले हुए जिन्होंने कहा नहीं कटानी है टिकट, तो आज हमने हमारे भाई जी को यहाँ पाया है। और निमित्त निर्माण और निर्मल वाणी उसका पूरा स्वरूप आज हमने भाई जी में देखा है। तो हमारे भाई जी का बारंबार लाखों बार शुक्रिया और हमारे ऋषि भाई जी का भी बहुत बहुत शुक्रिया कि ये जो हीरा है जो डब्बी में छुपा रहता है उस डब्बी को खोलने की उन्होंने चेष्टा की है। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी हाँ बिल्कुल, मैं आप सबसे, भाई साहब उठते तो आप सबको खड़ा ही करने वाली थी, बिल्कुल, और जोर से बिग राउंड ऑफ अप्लॉज प्लीज। बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी का, हम सबको इकट्ठा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, हम सबको ज्ञान सरोवर का, हमारे को इस भट्टी में आने का, इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज कराने का बारंबार शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।